ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్, సుప్రభాత్, సత్రికాల్. సలాం అలైకుం. ఇసిలే హమ్నే యే బాత్ లాస్ట్ మే కహీ కి ఆప్ కహాన్ హై వో పతా లగేగా. ఖైర్, మంచ్ పర్ హమారే బీచ్ హమారీ ఆదరణీయ దివ్యా బహన్ జీ ఆగే హై, బిందు బహన్ జీ భీ ఆగే హై. మే నివేదన్ కర్తా హూ ఆదరణీయ హమారే ఆజ్ కే ఇస్ మంచ్ కో సుశోభిత్ కర్నే వాలే అన్య మెహమాన్ భ్రాతా అశోక్ ఖరే జీ జో జబల్పూర్ సే ఆయే హై, కృపయా మంచ్ పే స్థాన్ గ్రహణ కరే. ఔర్ హమారీ ఆదరణీయ కుంతీ బహన్ జీ, ఉన్సే భీ అనురోధ హై కి వో మంచ్ పర్ అప్నా స్థాన్ లే. ఔర్ ఆప్ సబ్ సే అనురోధ హై కి మహానుభావో కా అప్నీ తాలియో కే ద్వారా స్వాగత కరే. యే సత్ర ఆప్కా సత్ర హై, యహాన్ వక్తా కోయి నహీ హై. ఆప్కీ బాత్ కో, ఆప్కే ప్రశ్నో కో స్పష్టీకరణ కే లియే హమారే బీచ్ హై, యా ఆప్కే హీ అనుభవ సునానే కే లియే ఆప్ ఆయేంగే. సున్నే కే లియే మంచ్ హై, ఔర్ బాకీ ఏక్ సునాయేగా, బాకీ సబ్ సునేంగే. లేకిన్ మే ఆప్ సబ్ సే యే పూచ్నా చాహతా హూ కి ఆప్నే కుచ్ ప్రశ్న లిఖే హై యా దియే హై యా ప్రశ్నో సే పార్ హో చుకే హై. किसी के कोई प्रश्न बचे हुए हैं या अभी नहीं है?
प्रश्न है वो हाथ उठाए, उनको बुला लो.
ठीक है, हाथ उठाइए जरा जिनके कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं. ठीक है, और एक दो तीन चार
आगे आ जाए.
आप पांचों जने आगे आ जाइए, यहाँ जो सोफा है ना आगे वाले सोफे पे आ जाइए. और बाकी जो साइड के चेयर्स पे बैठे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप बीच वाले सेक्शन में सभी आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ दिखेगा ना हमको. और आमने सामने जब बात करते हैं तो और ज्यादा मजा आता है. इसलिए भी जो साइड का सेक्शन है वो सारे अगर बीच में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. प्लीज,
यह नीचे माइक दिया.
इस बहाने से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी. जी, एक माइक नीचे रखने की.
ये दे दो अभी फिलहाल. सुनाने वाले भी ये प्रश्न पूछने वाले हैं, एक एक पूछेंगे. जिनका प्रश्न है आगे.
हाँ, जो साइड में अभी बैठे हैं, मेरा अनुरोध है बीच में, चाहे बीके भाई हैं तो भी वो पीछे की तरफ आ जाएं, लेकिन बीच वाले सेक्शन में आ जाएं सभी. ये जितना बीच का सेक्शन खाली हो पूरा कंप्लीट कर लें प्लीज. हाँ जी, आपका नाम बताएंगे और कहाँ से आए हैं वो बताएंगे, और आपका डेजिग्नेशन क्या है वो बताएंगे. फेस आप उधर करके करेंगे
प्रश्न पूछ रहे हैं,
और जो आपका मेन प्रश्न हो वो पूछेंगे. चार चीजें आपको.
मेरा नाम संजीव चंद्र कुमार है, मैं सीनियर इंजीनियर हूँ रेलवेज में, जगाधरी से मैं आया हूँ.
जी, प्रश्न पूछिए.
हम बहुत चीजें सुनते हैं, बहुत कुछ अच्छा देखते हैं, लेकिन उस वक्त उन चीजों का असर बहुत होता है. जब प्रैक्टिकली अपने सिचुएशंस में जाते हैं तो उस वक्त वो हम कर नहीं पाते, व्यवहारिक रूप से वो चीजें लागू नहीं कर पाते जो हम सुनते हैं या देखते हैं, या जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो उस वक्त तो असर उसका रहता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो विपरीत परिस्थितियों में हम फिर से ठीक व्यवहार नहीं कर पाते. तो ऐसा क्यों है, जिससे हम चाहते हैं कि वो व्यवहार कांस्टेंट रहे, वो विपरीत परिस्थितियों में भी वो व्यवहार हो जो हम अच्छा देखते या सुनते हैं.
ठीक है, रख दीजिए ये माइक, यहां रख दीजिए. और अब
भाई ठीक कह रहे हैं कि जब वातावरण है, संग अच्छा है, एटमोस्फियर अच्छा है, बातें अच्छी है, अन्न भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तब मन भी अच्छा है, और जब मन अच्छा है तो व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन जब अलग वातावरण में चले जाते हैं, अलग संग होता है, अन्न बदलता है, वहां मन भी बदल जाता है, और उसी को ठीक रखने के लिए इस प्रकार का संग ये नित्य जरूरी है। क्योंकि यहां तो कुछ समय का, कुछ दिनों का ही संग आपको मिल रहा है, और जो हमारे अंदर चीजें हैं वो बहुत काल से चली आ रही है और उसमें चेंज करना है हमें, तो रोज नित्य ऐसा संग, वातावरण और ऐसे विचार हमें रोज मिले तो हमारा मन भी सही रहेगा। और इसीलिए इस विद्यालय में कहा जाता है, अब जहां जहां से आए हो, बहुत करके उस स्थान पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के सेवा के स्थान है, आप यहां आए और हमने सेवा की, वहां भी हमारी बहनें हैं, और वहां जाओगे तो वो संघ, वातावरण और ये ज्ञान आपको नित्य सुनने मिलेगा। और कई बार हमें सेवा केंद्र पर नॉर्मली पूछते हैं, और संडे का दिन माना हर चीज क्लोज होती है, तो कहीं पूछते हैं संडे के दिन आपका केंद्र चालू होगा? ये केंद्र 365 दिन चलता है, छुट्टी ही नहीं है हमें। इसलिए उस सेवा के स्थान पर जाओ, ये ज्ञान पान करो, वहां का संग मिलेगा, वातावरण मिलेगा, तो आप जो प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करना चाहते हो वहां के एटमोस्फियर में, तो ये चीजें आपको बल देगी, ताकत देगी, सपोर्ट करेगी, ने? क्योंकि यहां तो ये सब सपोर्ट है, वहां फिर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर जो पहले के संस्कार या नेचर है वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वहां का संग, वातावरण आपको अभ्यास करने में मदद करेगा, और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। नई चीज एक अपनी लाइफ में शुरू करनी है तो उसका बार बार अभ्यास तो चाहिए, लेकिन उस प्रैक्टिस के लिए जो ताकत चाहिए वो इस तरह से मिलेगी, तो वहां पर भी आप कर पाओगे। जो समझते वहां नहीं हो पाता है, वहां भी हो पाएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट आइए।
मेरा नाम सुमंत है, मैं बीएसटी से आया हूं, बंबई से। आपके बहुत सारे प्रोग्राम बीएसटी में होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी किया हूं। ये मेरा इधर मैं दूसरी बार आ रहा हूं, पहले मैं 20 साल पहले शायद आया था। अभी आपके जो प्रोग्राम के वेरियस सेशन सुने तो मुझे ऐसा लगा, जो हम जो ऑडियंस है मोस्ट ऑफ अस आर अबाउट 30-35, टारगेट ऑडियंस शुड बी बिटवीन 15-25, बिकॉज दे आर द फ्यूचर जनरेशंस, एंड इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन आइदर स्कूल्स और कॉलेजेस इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू बिल्ड न्यू डिसिप्लिन इंडिया विथ अ यंग इंडिया हैविंग स्टेबल माइंड। थैंक यू।
आप प्रश्न जिनको पूछना है पहले वो आ जाएं, बाकी शेयरिंग एक्सपीरियंस और वो हम बाद में करेंगे आप सभी के लिए।
यू आर वेरी राइट, वी शुड हैव एड्रेस्ड द यूथ, लाइक इट इज सेट, यूथ इज द सीजन ऑफ होप, एंटरप्राइज एंड एनर्जी फॉर द नेशन एज वेल एज फॉर एन इंडिविजुअल। लेकिन जैसे पहले भी दिन आपको बताया था कि पूरे समाज को हमने 18 वर्गों में बांटा गया है, और इस तरह से बांटा है कि कोई भी वर्ग रह ना जाए। तो चूंकि ये ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल सेक्टर है तो इस उम्र के आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चों का भी, बच्चों को अलग से एड्रेस करते हैं, यूथ का हमारी अलग नेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस रहती है, और हमें बहुत गर्व है कि लाखों की तादाद में हमारे पास ऐसे यूथ हैं जो व्यसनों से मुक्त रहते हैं और कार्य व्यवहार संभालते हुए एक आदर्श पूरे भारत भर के लिए हैं। तो भले यहाँ पर आपको इस उम्र का वर्ग दिख रहा है, लेकिन आप अगर हमारे यूथ विंग की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आएंगे तो आप जिस उम्र का जिक्र कर रहे हैं वो आप वर्ग पा सकेंगे।
मैं एसके दुबे दिल्ली से आया हूँ, रेलवे में इंस्पेक्टर। सर मेरा प्रश्न है कि स्वाभिमान और अभिमान दोनों में क्या फर्क है? जब कभी हमारा स्वाभिमान हर्ट होता है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, कैसे संभव है कि इसको हम ओवरकम करें? थैंक यू।
मैं कुंती बहन से अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रश्न का हल बताएं।
ओम शांति। स्वाभिमान और अभिमान, एक है स्व का अभिमान, क्योंकि आत्म अभिमान की रीति से आपको आत्मा का लेसन मिला, और दूसरा जाता है अभिमान। जब हम इस देह को, इस शरीर को देखते हैं और उसके आधार से व्यवहार करते हैं तो हमें अभिमान कई बातों का आता है, लेकिन अभिमान को किस प्रकार से हम खत्म करें उसकी सहज विधि आती है कि अभिमान को दो शब्दों में बांट दिया जाए। अभी प्लस मान, दो बातें जब आ जाती हैं कि हम उन बातों को अभी मान लें, स्वीकार कर लें, और जब हम उन बातों को उस समय स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा वो बाहरी अभिमान जो है वो खत्म हो जाता है, और स्वाभिमान माना आत्मा का शुद्ध अभिमान वो रहता है। और जब आत्मा का शुद्ध अभिमान आता है तो ज्ञान, प्रेम और आनंद, सुख शांति की अनुभूति को हम कर सकते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट आई।
ओम शांति। ओम शांति। माय नेम इज सूर्यकांत पांचाल। आई बिलोंग टू बीएसटी अंडरटेकिंग एंड केम फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। मेरा सवाल यह है कि हम अपने विचार जब किसी के सामने रखते हैं तो अपने विचारों में जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो अधिकतर एम्फसाइज करें, या अभी जो माहौल है अपन आजू बाजू में जो देखते हैं कि पॉजिटिविटी के वजह अपन जो नेगेटिव जो थॉट्स है उस पर अधिक एम्फसाइज करें, या दूसरों को क्रिटिसाइज करके अपना पॉइंट्स एम्फसाइज करें? प्लीज क्लैरिफाई।
ये तो नेचुरली है कि पॉजिटिविटी है वो व्यक्ति को आराम देती है, खुशी देती है, शांति देती है। तो पॉजिटिव ही सोचना भी चाहिए, पॉजिटिव ही सुनना चाहिए, और सुनाना भी वही चाहिए। नेगेटिव बातों को भले कोई नेगेटिव बोल भी रहा है, कह भी रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट में मुझे आना है, उसका प्रभाव मेरे पर पड़ने देना है। मैं अपने पॉजिटिव बातों में मैं दृढ़ रहूं तो नेगेटिव बातों का असर मेरे पर नहीं होगा। यदि मैं भी उसी में आ जाता हूं, इसने नेगेटिव बात कही, और कल भी मैंने बताया था कि बहुत नेगेटिव बात एक बात किसी ने कही, लेकिन उस पर घंटों भर मैंने सोचा, जरूर उसका इफेक्ट होने वाला है, कहने वाले ने कहा, लेकिन फिर भी मैंने अपने पॉजिटिव विचार को बना के ही रखा तो उसका प्रभाव मेरे पर नहीं होगा। और ये तो जानते ही हैं कि पॉजिटिव चीजें ही होनी चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए।
हाँ जी, नेक्स्ट।
मैं दिनेश सिंह गोरखपुर से आया हूं, मैं रिटायर्ड एसएस हूं। मेरा प्रश्न गीता से संबंध में है। गीता में एक जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी जगह कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो अगर मैं बुरे कर्म करता हूं या अच्छे कर्म करता हूं तो इसका जवाबदार मैं कैसे हुआ? अब वही पत्ता ही लाते हैं, उन्हीं की मर्जी से मैं बुरा काम भी करता हूं और अच्छा भी काम करता हूं। ये बातें मुझको स्पष्ट नहीं होती हैं और मैं बचपन से इसका इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। कृपया हमको स्पष्ट करें।
कुंती बहन जी, आप इस प्रश्न का जवाब।
आपके प्रश्न में ही उत्तर भी समाया हुआ था। ये गीता के भगवान ने कहा कि मैं पत्ता पत्ता हिलाता हूं, लेकिन यह सोचने की बात है कि आपको परमात्मा का परिचय दिया गया कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। गीता के अंदर ही लिखा है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हूं। अब वो सोचने की बात है कि पत्ते को हिलाने के लिए देह की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो है निराकार। तो परमात्मा इतने साधारण कामों को करे, क्या इतने साधारण कार्य हम मनुष्य करते हैं? दूसरी बात हम बताते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा तो मेरे को देख करके और करेंगे, राइट? तो कर्म मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा करती हूं, कर्म करने वाली वो आत्मा है जो शरीर के द्वारा करती है, क्योंकि परमात्मा के लिए कहा गया वो अकर्ता अभोक्ता है, वो कर्म से न्यारा है। तो जो कर्म जन्म नहीं लेता तो वो कर्म भी नहीं होता, और जो कर्म नहीं है तो वो भोक्ता भी नहीं है। तो कर्म करने वाली वो आत्मा इस शरीर के द्वारा करती है, और जैसा कर्म करती है आत्मा वैसा फल मिलता है। क्योंकि गीता के अंदर एक और बात आती है कि आत्मा जैसा कर्म किया उस अनुसार से उसे टाइटल मिला, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। कभी भी महान परमात्मा या पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा इस प्रकार से नहीं कहा गया है। तो इससे सिद्ध है कि जो भी कर्म हम करते हैं वो हम आत्माएं करती हैं, और आत्मा जैसा कर्म करती है उस अनुसार से उसका फल भी उसे मिलता है।
दिव्या बहन जी, इस पे थोड़ा सा और गहराई से प्रकाश डालेंगे।
भाई ने कहा कि पत्ता पत्ता वो परमात्मा की, हाँ तभी हम ये देखें कि जो कुछ भी, पत्ते की बात छोड़ दो, हमारी लाइफ में भी जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये मानते हैं हम भगवान ही की इच्छा से। अब हम देखते हैं कि अभी आप यहां बैठे हैं, अभी उठना मत, भगवान की इच्छा हुई तब आप उठेंगे। कब उठेंगे? क्योंकि अभी जब हमारी इच्छा होती है, नहीं यहां भी कहा जाता है, अभी ये सेशन चल रहा है आप बैठना, फिर भी किसी की इच्छा होती है तो उठ के चला जाता है। अब वो भगवान की इच्छा हुई और उठ के चला गया वो, कि अपनी इच्छा से? हम अपने आप में पूछे कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं या सेकंड सेकंड भगवान से पूछते हैं, वो कहते हैं और हम करते हैं, क्या है? अपनी इच्छा से करते हैं ना, भगवान के कहने के हिसाब से कहां चल रहे हैं? नहीं तो आज संसार भगवान ही हमको भी चलाता, हम ही उनसे चलते तो आज संसार की ये हालत ही नहीं होती। क्योंकि भगवान तो गलत रीति से हमें चलाता नहीं, गलत करवाता नहीं, तो ये स्थिति ही नहीं निर्माण होती। जो भी पुरुषार्थ कहते हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं ईश्वर ने उनकी समझ हमको दे दी है। गीता में ज्ञान क्यों दिया? भगवान को ही सब कुछ करवाना है तो ज्ञान देने की जरूरत है, आवश्यकता है ज्ञान देने। ज्ञान क्यों दिया? कि मैं समझ देता हूं आपको, फिर क्या करना है और क्या नहीं उसके लिए आप स्वतंत्र हो। समझ, आप अपने बच्चों को भगवान की बात छोड़े एक तरफ रखे हैं, आप अपने बच्चों को समझ दे सकते हो। आप चाहो वो करता है, पत्नी करती है, कोई नहीं करता है मेरे हिसाब से कभी कभी करती है ना, लेकिन हमेशा करे ना, भगवान के हिसाब से हमेशा हम भी नहीं चलते हैं, और न पत्नी चलती है न बच्चे चलते हैं। आप उसको समझा ही सकते हो, कह सकते हो, चलना है वो अपनी रीति से चलेंगे, आप उनको नहीं चला सकते। तो भगवान ने भी हमें गीता में जीवन जीने का ज्ञान दे दिया है, बाकी चल रहे हैं हम अपने हिसाब से। इसलिए परमात्मा न पत्ता हिलाने के लिए कोई फ्री बैठा है। आज मनुष्य को भी कोई साधारण काम दे दो ना, तो करने के लिए हमेशा के लिए कोई तैयार नहीं है। तो भगवान को और कोई धंधा नहीं है जो पत्ता हिलाता ही रहेगा। इतने महान व्यक्ति और ये कार्य करें, कोई नहीं करेगा ना। तो भगवान का ये कार्य नहीं है, ये प्रकृति है। हवा चलती है तो हिलता है, हवा स्थिरी तो नहीं हिलेगा। और ये काम कोई भगवान का नहीं है, और हम भी जो कर्म करते हैं वो अपनी सोच से अपनी इच्छा से हम करते हैं, भगवान के हिसाब से नहीं चल रहे। चलते तो हम क्या से क्या आज होते, और संसार भी कितना सुंदर होता, क्या मानते हो? ठीक है
बहन जी, एक इसमें जुड़ी हुई बात है कि परमात्मा के लिए कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो इसका अर्थ तो ये भी हो गया कि परमात्मा दुख तो देता ही नहीं है, और आज मनुष्य दुखी हो रहा है, इसका अर्थ ये भी है कि कर्म के अनुसार ही दुखी हो रहा है। तो जो कहा गया है उससे इस बात को भी जोड़ सकते हैं ना।
भगवान तो दुख देता नहीं है, उसको सुख के लिए ही दुख के समय भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो सुख देता है। तो दुख देने का तो काम भगवान का है नहीं। और आज जो दुख हो रहा है क्या भगवान दे रहा है? कि अपने कर्मों का फल है, उसका मतलब भगवान नहीं देता। आज एक पत्ते हिलने की बात करते हो, आज एक झाड़ गिर जाता है तो भगवान ने गिरा दिया? हाँ, लेकिन हमें उसको समझना भी है ना, जो पढ़ा है, लेकिन उसको समझने की वास्तविकता को समझने का प्रयत्न भी तो करना है ना हमें।
कि जैसे हम लॉजिक्स की बात करते हैं ना कि लॉजिक के हिसाब से कैसा है, तो लॉजिक के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात लागू नहीं हो रही है। जिसने लिखा जिस तरीके से लिखा उसका परिपेक्ष अलग हो सकता है। कहने का अभिप्राय जो बहन जी बता रही हैं तो स्पष्टीकरण तो हम समझ सकते हैं ना। फिर अब आपको अच्छे कर्म करने के लिए जो निर्णय लेना है वो समझ भगवान हमें इस माध्यम से दे रहा है। इस समझ को आप कितना इस्तेमाल करेंगे उस अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। जी
दिव्य प्रभा बेंच, में क्वेश्चन मेरा आपसे ही है। मैं मुंबई से हूँ, एडी पाखरे नाम है मेरा, रेलवे से हूँ। क्वेश्चन सेम सिमिलर इनके जैसा है। अगर गीता में लिखा है कि जो भी कर्म रहेंगे उसी के अनुसार इंसान करेगा, सेम सिचुएशन यहाँ भी बताया कि जो ड्रामा है ड्रामा के हिसाब से ही हर एक्टर अपना रोल प्ले करेगा। मान लीजिए किसी का मतलब रोल में लिखा है कि आप बुरा कर्म करोगे, किसी के लिखा है अच्छा कर्म करोगे, अगर ये सिचुएशन ये मान के चलते तो कोई आदमी कभी ना डरेगा ना, क्यों? क्योंकि ठीक है भाई, ऊपर ड्रामा में लिखा है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा कि आज के यूथ में एक एग्रेसिवनेस है और एक शॉर्ट टेम्पर है, इसका मुख्य रीजन क्या हो सकता है?
सबसे पहले उसका रीजन है डिसटिस्फेक्शन। जहां मनुष्य गुस्से कब होता है, एग्रेसिव कब होता है, जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जो खुद चाहता है, जो इच्छा रखता है, जैसी अपेक्षा रखता है वैसा नहीं होता, तो दिमाग गर्म होता है, एग्रेसिव हो जाता है। तो कारण उसका यूथ हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चा। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में, कि बच्चा आया, मैंने चॉकलेट दी, आया तो मैंने पीछे हाथ खींच लिया, गुस्से हो गया वो बच्चा, भी दोबारा लेने के लिए नहीं आया वो। तो जो इच्छा है वो उसकी सेटिस्फाई नहीं होती है तो एग्रेसिव हो जाता है। गुस्से आने का कारण ये है। और दूसरी बात, आपने ड्रामा की कही, अभी हर एक आत्मा एक जैसा रोल कर नहीं सकती है। पॉसिबल है? नहीं है। डिफरेंस है ही, और डिफरेंस जरूरी भी है, आवश्यक है कि नहीं है? सब रेलवे डिपार्टमेंट में या बीएसटी में सब मैनेजर मैनेजर ही हो तो बीएसटी चलेगी, बस चलेगी, चलाने वाला भी चाहिए, उसका वर्कर रिपेयर करने भी वाला भी चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए, उसमें पैसेंजर भी चाहिए, हर प्रकार की चीज चाहिए। इस सृष्टि में भी हर प्रकार की व्यक्ति है तब ये सृष्टि चल रही है। इसमें हरेक की जो बात है, पार्ट जो प्ले कर रहा है, अपने संस्कारों के हिसाब से कर रहा है, हैबिट के हिसाब से वो कर रहा है ना। यहाँ ड्रामा की बात इसलिए है कि आज मैं एक प्रयत्न करती हूँ, मैंने आपको समझाया, बहुत बारी हम समझाया, आपको भी समझ में भी आया, फिर भी आप अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पाते हो और उसी अनुसार ही आप एक्शन करते हो। अब उससे मुझे क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा ना, कि मैंने 50 बार इनको मैंने कहा, समझते ही नहीं है, करते ही नहीं है, डिस्टर्ब होंगी ना। तो मुझे अपनी स्टेज डिस्टर्ब नहीं करनी है, इनका पार्ट रोल ड्रामा में ऐसा है। डिस्टर्ब नहीं होने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, मेरी अपनी हैबिट को नहीं बिगाड़ने के लिए ड्रामा। कोई नहीं चेंज कर सकता है तो आप डिस्टर्ब होके अपने आप को बिगाड़ोगे, उनसे तो कोई बात नहीं, उसका रोल वैसा है, वो कर रहा है, ठीक है। मैं अपने आप को तो डिस्टर्ब नहीं करूं, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी तो मैं कभी भी उनको शिक्षा दे नहीं पाऊंगी, समझा नहीं पाऊंगी। इसलिए ड्रामा यहां कहा जाता है, ड्रामा ये ढाल के रूप में यूज करने की चीज है ना। ओम शांति।
नेक्स्ट।
ओम शांति। मेरा नाम जितेंद्र जैन है, मैं मुंबई से आया हूँ। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, बट अक्सर मेरे साथ ये होता है कि आई एम सराउंडेड बाय द नेगेटिव माइंड्स, ओके, एंड अगर मैं उनके बीच में बैठता हूँ, मैं उनको कुछ समझाता हूँ, तो दे डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इन्फ्लुएंस देम। और मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसे सिचुएशन में व्हाट आई ऑफन डू इज आई इग्नोर, बट एट द सेम टाइम दैट थॉट्स कीप लिंगरिंग इन माय माइंड कि ये तो मेरे क्लोज वंस है, दे रिक्वायर माय हेल्प, एंड नाउ हाउ आई कैन हेल्प देम, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल दैट सिचुएशन।
द फर्स्ट लाइन दैट यू यूज्ड, यू सेड यू आर अ पॉजिटिव थिंकर, राइट?
प्लीज बैठिए।
व्हाट इज टू थिंक पॉजिटिवली? To see the brighter side of things, to be positive, to think positive. Positive thinking होता क्या है? अब बैठ।
आप अपने दूसरे स्थान पे चलिए।
हम ये अक्सर बहुत सुनते हैं positive thinking, और ये positive thinking होता क्या है? माना कोई भी घटना हो या कोई भी व्यक्ति हो उसमें अच्छाई को देखना, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। तो आपने जो सबसे पहली लाइन कही कि मैं पॉजिटिव थिंकर हूं, है ना, तो आसपास तो नेगेटिविटी रहेगी और दिन प्रतिदिन हम जानते हैं कि और बढ़ रही है, लेकिन उसके बीच जितना आप अपनी उस स्थिति में स्थित रहेंगे उतना उसके प्रभाव से परे रह सकेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, माना उसकी अच्छाई को मुझे पिकअप करना है। लाख कमियां हैं, कोयले जैसी काली आत्मा भी क्यों ना है, लेकिन उसमें जो एक गुण है, एक अच्छाई है, उस अच्छाई को मुझे पिकअप करना है। कमी से मुझे काम नहीं है। वो तो दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा, केवल मैं परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरी स्थिति, उस स्थिति को मैं बनाए रख सकता हूं, उस स्थिति को और शक्तिशाली बना सकता हूं। ये विद्यालय द्वारा और हमारी ब्रांचेस द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ज्ञान बहुत है, लेकिन साथ में जरूरी है ताकत, कि उस ताकत को आप समय पर यूज करो और उस ज्ञान के स्वरूप बन सको। डूज एंड डोंट्स क्लियर हो रहे हैं अभी, लेकिन जब इस ज्ञान के साथ आप योग का अभ्यास जोड़ देंगे तो आप पावर हाउस से वो पावर ले सकेंगे कि उस ज्ञान को आप समय पर इंप्लीमेंट कर पाए। केवल हम यहां नॉलेजफुल होने के लिए नहीं आए, नॉलेज के साथ साथ जरूरी है पावरफुल होना, और इसीलिए यहां पे मेडिटेशन के सेशंस रखे जाते हैं कि आप वो पावर ले सकें कि जो आप सुन रहे हैं उसका स्वरूप बन पाए और समय पर धोखा ना खाएं। तो फिर ऐसा होगा कि परिस्थिति का असर आपकी स्थिति पर नहीं होगा, आपकी स्थिति सर्वशक्तिवान के योग से इतनी शक्तिशाली होगी कि स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और परिस्थिति परिवर्तित हो जाएगी, है ना। ओम शांति।
या ये भी कह सकते हैं कि टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में रहेगा, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप दूसरे की सिचुएशन से अगर आप अफेक्टेड हो रहे हैं, माना आपका रिमोट कंट्रोल आपने दूसरे के हाथ में दे दिया है, उसके बजाय आप अपने मास्टर, जैसे इन्होंने कहा ना पावरफुल बनेंगे तो आपका रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में रहेगा।
वी वुड वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस मोर ऑफ मेडिटेशन बेसिकली। डूज एंड डोंट्स आर क्लियर टू यू, ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मेडिटेशन सो दैट यू कैन बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड्स नॉलेज।
दूसरी बात इसमें ये है, आप जो कह रहे हैं कि आपकी स्थिति पर नहीं इफेक्ट होता है, लेकिन आपको उनके लिए सोच चलता है कि भाई वो नेगेटिव सोच रहे हैं, अब वो अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। हमारी दादी जी कहती है तो हमें अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है, और क्या होगा कि आप पॉजिटिव रहेंगे आपका पूरा अप्रोच क्या रहेगा उनसे डिफरेंट, ना, और वो उनको इफेक्ट करेगा,
खरे साहब
वो उनको असर करेगा, और फिर उनके मन में आएगा कि देखो मैं नेगेटिव सोचता हूं उससे मेरे व्यवहार क्या, और इनका डिफरेंस उनको समझ में आएगा। डिफरेंस समझ में आएगा, आपकी चेहरे की खुशी, आपकी शांति, वो मन उनके मन को भाने लगेगी, भाने लगेगी तो फिर वो पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव क्योंकि स्लोली होगा ये प्रोसेस, जल्दी नहीं होगा, उसमें हमें अथक रहना होगा, उसका इम्पैक्ट होता ही है।
ओम शांति। मैं इस मंच से पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ आने के बाद मुझे क्या समझ में आया। हाँ नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर
प्रश्न
है, एक मिनट सुनो कि यहाँ पर जो है मैंने तीन दिन से प्रोग्राम देखा तो दो कबूतर यहाँ घूम रहे थे जिसकी वजह से सब लोग कुछ डिस्टर्ब भी हो रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी अमरनाथ जाकर के आया, वहां पर जो शांति थी वैसी शांति यहाँ है। वहां शिव बाबा थे तो यहाँ भी शिव बाबा है, और वो वहां कबूतर थे और यहाँ भी कबूतर है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि एक शिव का धाम वो था और एक शिव का धाम ये है। एक तो मेरे ये समझ में आया। एक दूसरी बात जो है,
अगर ये है पॉजिटिव थिंकिंग।
एक दूसरी बात जो मेरे समझ में आई कि अगर हम वर्ल्ड का इतिहास पढ़ते हैं, वर्ल्ड का इतिहास पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया, कि उनके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, और जब उनकी हिस्ट्री पढ़ी गई तो उसमें देखा गया कि भाई अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज क्यों किया। जब हिस्ट्री पढ़ी तो वो कोई ज्यादा वीर नहीं थे, वो ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं थे, लेकिन उनकी एक विशेषता जो कॉमन पाई गई वो थी उनका डिसिप्लिन। आप अमेरिका के प्रधानमंत्री को देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देखो, वो हमेशा आपको सूट में नजर आएगा, सूट और टाई में नजर आएगा। वैसे ही एक उनके गुण की वजह से, कि डिसिप्लिन की वजह से उन्होंने दुनिया पर राज किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी में भी सभी बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं, सभी का ड्रेसअप ऐसा है, तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा कि अपने डिसिप्लिन की वजह से हमारे ब्रह्मा कुमारी के भाई और बहनें पूरी दुनिया पे सबका दिल जीत करके राज करेंगे। अब मेरे को जो समझ में नहीं आया वो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे यहां पर इस प्रोग्राम में, मैं ये बताना भूल गया सॉरी, कि मैं रेलवे से हूं, नाम मुकेश सोनी है और मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर हूं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि रेलवे के अंदर अधिकारी भी यहां आते हैं और चर्चा होती है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की, हमेशा चर्चा होती है कि डर को दूर भगाओ। हमेशा मैंने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले अगर कोई गलती करता है तो उसको गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन रेलवे का जो लोको पायलट है अगर वो गलती करता है सिग्नल पासिंग डेंजर तो उसको केवल रिमूवल फ्रॉम सर्विस का पनिशमेंट ही दिया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, जबकि वो इस काम को, एक आदमी किसी भी काम को अगर एक बार करे, 10 बार करे, एक लोको पायलट अपनी नौकरी के दौरान 20 लाख बार सिग्नल पार करता है। 20 लाख बार जिस काम को एक आदमी करता है तो एक दो बार गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी उसे रिमूवल फ्रॉम सर्विस का पनिशमेंट दिया ही जाता है, तो वो डर को दूर क्यों नहीं करते। एक बात तो ये समझ में नहीं आई, और दूसरा अभी दीदी ने भी बताया कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि रेलवे के हर सेमिनार में लोको पायलट के साथ जब भी चर्चा होती है तो स्पॉट यानी सिग्नल पासिंग एज डेंजर, यानी हर बार इसी की चर्चा होती है, तो जब बार बार इसी की चर्चा होगी तो डेंजर पासिंग तो होगा ही ना, तो उसको पॉजिटिविटी बतानी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे रेलवे के अधिकारी भी इस बात को मंच तक पहुंचाएं कि पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए। जो भी रेलवे के अधिकारी बैठे हैं वो रेलवे बोर्ड तक इस बात को पहुंचाएगी, क्यों इस बात की ही चर्चा की जाती है, गलत बात की ही क्यों चर्चा की जाती है। और आखिरी बात जो मेरे को पूछनी है कि यहां पर हमने शांति शांति की चर्चा करी, बहुत शांति की चर्चा करी, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एक जगह मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर शांति पसंद क्यों नहीं है। जैसे कोई बच्चा छोटा 2 साल का 3 साल का बच्चा है, अगर वो 30 मिनट के लिए शांति से बैठ जाए तो उसकी माँ विचलित हो जाती है, उसको उस जगह उस माँ को वो शांति पसंद क्यों नहीं आती, ये मेरा समझ में नहीं आया, कृपया ये बताएं।
आपके प्रश्न को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और पहले पार्ट के रूप में हमारे बीच जो मंच पर विशेष अतिथि के रूप में विराजित हैं दाता अशोक कुमार खरे जी, जो डिप्टी चीफ कॉमर्शियल मैनेजर हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने सेफ्टी और ऑफिसर के रूप में कार्य करते समय भोपाल डिवीजन को सेफ्टी अवार्ड भी दिलवाया था। ऐसे व्यक्ति जो आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा भी सकते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले पार्ट के रूप में जो सिग्नल मैन के लिए, ये लोको पायलट के लिए पनिशमेंट की बात है वो, और रेलवे की जो समस्या है उससे संबंधित जो बात है वो आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं भी, और इसको आगे पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे वो भी बताएं।
ओम शांति। सबसे पहले मैं सोनी जी को बता दूं, इन्होंने पहले फर्स्ट सेंटेंस यूज किया डिसिप्लिन, कि हमारे यहां पर डिसिप्लिन इतना नहीं है जैसे कि ब्रह्म कुमारी में यूनिफॉर्म को लेकर के है वो है, उसी तरीके से हम सब रेल प्रशासन में काम करते हैं। हमारा कार्य रेल संचालन, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट भी है स्पीड सेफ्टी स्पेशलिटी, तो स्पीड एंड सेफ्टी रखना तो रेलवे प्रशासन का पहला दायित्व है। आप सभी लोग बैठे हैं, काफी कुछ लोग रेलवे से हैं, काफी कुछ लोग बाहर से भी होंगे, तो क्या कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है कि रेल प्रशासन सुरक्षा के प्रति लापरवाह या कोई इग्नोरेंस हो? प्रश्न यहां पर जो रेलवे प्रशासन है, रेलवे का कार्य है, जिस प्रकृति का कार्य है हमारा, वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए सभी तरीके से। अगर कोई एक लोको पायलट कहीं गलती करता है, मैं पूरी तरह सहमत हूं, जो हमारे सोनी जी हैं हमारे साथ काम भी किया है इन्होंने, बहुत अच्छे से, बहुत ही डेडिकेटेड हैं, मैं इनकी परेशानी को बहुत दिल से, आज से नहीं वर्षों से समझता हूं, और ये रेलवे के प्रशासन का इंटरनल चीज है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमको इसको डिसिप्लिन रखना होता है। पहले जैसे बोले कि हम डिसिप्लिन, तो रेलवे में आने के लिए हम सबसे पहले जो सिखाते हैं कि डिसिप्लिन, अगर हमारा ड्राइवर लोको पायलट डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम इसका संचालन सुरक्षा पूर्वक नहीं कर सकते हैं। क्या हम एक गलती कोई कर दे, एक एक्सीडेंट हो जाए, इसको इग्नोर कर सकते हैं, 10-20 लोग चले जाए? तो ये तो कि क्यों फर्स्ट स्टेप अगर किसी ने ऐसी गलती कर दी तो रिमूवल फॉर सर्विस या जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है जैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं है, काफी कुछ चेंज भी हो रहा है। सेकंड चीज मैं बताना चाहता हूं कि रेल प्रशासन भी बहुत संवेदनशील होता है, इतनी सुविधाएं, इतनी सभी चीजों को रखते हैं कि भाई उनको रेस्ट होना चाहिए, उनको प्रॉपरली सब टाइम से होना चाहिए, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी हो रहा है। सेकंड चीज जो है कि रेल संचालन के लिए जो लोको पायलट हुआ या स्टेशन मास्टर हुआ या जो हमारा कंट्रोलर है, वो सभी बहुत ही सेंसिटिव वर्क है, बहुत वहां पर जैसा अभी हम सेशन में भी देख रहे थे, बहुत ज्यादा इस माइंड स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, स्थिरता की, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है हमारे काम में। इस कंसंट्रेशन के लिए हम सब रेल, खास करके मैं उन लोगों को कहना चाहिए जो हमारे रेल कर्मचारी हैं, रेल अधिकारी लोग भी हैं, और जिनका काम सीधे सीधे रेल संचालन से जुड़ा हुआ है, उनके लिए तो ये सेशन मैं समझू अमृत समान है। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहां पर हमने दिया आध्यात्मिकता, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे आध्यात्मिकता में पूरे टाइम आप उसमें जुड़ जाए कर जाए, लेकिन थोड़ा टाइम अगर आप निकालें इसमें, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। आप सभी को पता है कि हमने ये चीज शुरू की है रेल प्रशासन में, लोको पायलट जब हमारे जाता है तो लॉबी में हमने शुरू की, तो हमने पहले कंसंट्रेशन के लिए यही चिन्ह करके उसको ध्यान करने के लिए हमने रखा रखा। आप सभी को, जिनको नहीं मालूम हो, मैं बताना चाहूंगा, हमने सभी लॉबियों में अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट करी, ऐसी किया, कोई असुविधा नहीं हो, सब चीज करी, लेकिन साथ में हमने मेडिटेशन के लिए भी करवा, आपके रनिंग रूम में मेडिटेशन रूम हमने स्पेशली खोल रखा है और मेडिटेशन करवाया जाता है, उससे आप अपना आध्यात्मिकता के थ्रू, ये तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसके थ्रू तो आप बहुत ज्यादा अच्छी स्पेशलिटी, अगर आपके माइंड में स्थिरता होगी आप गलती नहीं करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि अगर आपने गलती कर दी तो हम उसको बहुत लापरवाही पूर्वक, बहुत लाइटली ले लें, उसको छोड़ दें। हमको यह भी देखना होता है कि आपकी गलती से क्या प्रभाव होगा लोगों में, लेकिन वो गलती नहीं हो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो आध्यात्मिकता जो है, ये हमारी जो ब्रह्म कुमारी, ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आए हैं, इसमें ये बहुत अच्छा योगदान देता है और दे रहा है। सारे इसी उससे जुड़ करके हम लोगों ने सब लॉबी में, रनिंग रूम में, जहां पे आप लोग आराम करते हैं, ये मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन रूम खोल के, मेडिटेशन जब ड्यूटी में जाते हैं तो आपको बोला जाता है मेडिटेशन, आप 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करें, इसके बाद आप ड्यूटी में जाएं, गाड़ी में चढ़ें। मैं चाहता हूं और मेरा प्रयास होगा कि जो जो भी रेल संचालन जुड़े हुए हैं, भविष्य में हुआ तो संभव है हो, और उसके लिए किया जाएगा, जो प्रयास किया जाएगा कि जो हमारे स्टेशन मास्टर हैं, स्टेशनों में भी इस तरीके से किया जा सकता है, जो कंट्रोल ऑफिस है हमारे जहां पे गाड़ियों का संचालन हम लोग करते हैं, पूरे पूरे एरिया से सभी कंट्रोल होते हैं, वो 5 मिनट 7 मिनट बैठ के कर सकते हैं, वो किया जा सकता है। इसके अलावा रेल प्रशासन आपको बिना छुट्टी लिए, बगैर किसी पास के, जैसे आप लोग भी आए होंगे या कुछ लोग नहीं मालूम हो तो मैं आपको देता हूं, रेलवे बोर्ड का हमारा क्लियर नियम है और पत्र है, और आप उसको लेकर के आप अपने जाएं अपने अपने स्थानों में जहां कार्य कर रहे हैं और सभी अपने साथियों को बताएं, उसका लाभ लेकर के यहां पर आए। मैं कोई ब्रह्म कुमारी का केवल पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूं, कहीं भी जहां भी मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है, ये मुझे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा। मैं एक साल से इसमें जुड़ा हूं, मैं अभी बताएंगे काफी समय भी काफी कम है, तो इसमें वो रेल प्रशासन आपको आने जाने की सुविधा देती है, पास देती है, छुट्टी देती है, आप आए और करके जाएं, उसका लाभ लें, ना केवल अपने रेल कार्य में, अपने परिवार में, अपने साथियों में, अपने कुटुंब में और लोगों को भी जोड़े। यही मेरा कहना, आपको गलती नहीं करने के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं, गलती करके आपको बहुत उसको इग्नोर कर दें ये रेल प्रशासन नहीं कर सकता है। सेफ्टी इज अ प्राइम एंड टॉप प्रायोरिटी ऑफ द रेलवे। थैंक यू।
दिव्या बहन जी, जो भाई ने दूसरा पार्ट प्रश्न का किया था कि शांति नहीं रहती है उस माता को जो जिसका बच्चा शांत रह जाए, तो ऐसी क्यों? तो
भाई ने कहा कि कोई बच्चा शांत बैठता है तो माँ डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसा है? अभी बॉम्बे में तो मेरे पास जो माताएं आती है वो इस प्रॉब्लम को लेकर के आती है कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत चंचल है और उनको कैसे कंट्रोल करें, इसलिए बच्चों को लेकर के आती है। वो तो चाहती है कि इतना समय शांत बैठे तो वो माता खुश हो जाती है, डिस्टर्ब नहीं होती ने? क्योंकि शांति तो सबको पसंद है, कौन नहीं चाहता ने? जो बच्चे शांत रहे तो माता को तो गौरव होता है कि दुनिया के बच्चे चंचल है और मेरा बच्चा बहुत शांत और स्टेबल माइंड वाला है, उसमें अशांत होने की और डिस्टर्ब होने की बात ही नहीं है। वो माता की कमी है कुछ चीज की कि जो ऐसे समझती है।
माना ये कि वो कोई एक्सेप्शन हो सकती है, आज की स्थिति में
ऐसे नहीं हो सकता,
होगा नहीं।
एक चीज मैं बोलूं कि जैसे शांति की बात की सुनी जी ने, तो शांति मैं आपको बताऊं अपने पर्सनल अनुभव कि हमारे परिवार में मैं जो है घर में बहुत ज्यादा बचपन में करता हूँ, बहुत ज्यादा शांत रहता हूँ, कुछ ज्यादा वो नहीं करता हूँ, सोचता रहता था भाई वगैरह। तो दूसरे हमारे घर में मेरे मदर फादर और जो परिवार वाले जो आसपास के लोग थे वो बहुत प्राउड करते थे कि बड़े शांत, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत अच्छा, मतलब इस चीज को बहुत अप्रिसिएट करते थे बचपन से, तो ये तो बहुत अच्छा प्राउड वाली चीज।
हाँ। अभी आपसे अब मेरा प्रश्न है कि आपको यहां आने के बाद चार दिन के कार्यक्रम के आधार पर कैसा लगा? अभी मेरा प्रश्न यह है कि जिसको बहुत अच्छा लगा वो हाथ उठाइए। अच्छा, अच्छा, जिसको बहुत 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 अच्छा लगा वो हाथ उठाइए। सब में ऐसे नहीं, सब
सबको बहुत अच्छा लगा, आप मना तो करो भाई।
अच्छा, बहुत 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 अच्छा लगा
सारे।
तो फिर तो अनुभव का प्रमाण बहन जी आपको मिल गया ना?
आप उनसे पूछो, अच्छा तो लगा है, उनके चेहरे ही बता रहे हैं
जी,
है ना, फेस ही बता
अच्छा,
रहे हैं।
अब ये बताइए, आप में से कौन है जो 30 सेकंड की बाइट रिकॉर्ड करने के लिए अपना अनुभव सुनाने के लिए आना चाहता है? 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे।
और ये तो करिए, लेकिन सुरेश भाई ये पूछिए, यहाँ सबको एक मिनट है, सबको बहुत 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 अच्छा लगा ऐसा पूछा और सबने हाथ उठाए, खुशी हुई मुझे भी। लेकिन साथ साथ ये बात है, जो अच्छा लगा है, एक तो क्या अच्छा लगा और अच्छा लगा है, क्या अच्छा लगा है और क्या करना मैं चाहता हूँ, या अच्छा लग करके मैं अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहता हूँ। पहले ऐसे थे, अब मैं ऐसे चेंज होने की इच्छा, अच्छा लगा है इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा ना? हाँ, तो ऐसे जो है वो आगे आ जाओ।
जिसमें एक बात आपको ये है कि जो सुनाने आ रहे हैं वो भी, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है, यहाँ बहुत सफाई है, यह वातावरण बहुत अच्छा है, ये आपको नहीं सुनाना है। आपको सिर्फ ये सुनाना है कि आपने इसमें से क्या खास बात अपने लिए गांठ बांध करके रखी है, एक, और दूसरा वहां जाकर के इसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हुए दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे। वो दो ही बातों को शेयर करना है। अनुभव की जहां तक बात है, जो लिखित में हमने फीडबैक फॉर्म दिए थे आपको, वो आपने सबने भर लिए होंगे, नहीं भरे होंगे तो आप भर करके हमको दे करके जाएंगे, लेकिन अभी आप शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सुनाने के हिसाब से पहले इनको।
हाँ जी जी जी, फीडबैक फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफिस में जिन्होंने,
अगर आप किसी को नहीं मिला फीडबैक फॉर्म, ऐसा है जो यहाँ बैठे हैं फीडबैक फॉर्म नहीं मिला है, सबको मिल गया ना? सब नहीं मिला तो बाहर से टेबल पे से ले सकते हैं।
हाँ बोलिए।
ओम शांति, बाबा को प्रणाम और आप सबको प्रणाम। मेरी जो सोच बदली है यहाँ आने से, पहले मैं दुनिया को बदलना चाहता था, अब मैं खुद को बदलूंगा।
अपना नाम और परिचय जरूर देंगे, 30 सेकंड वाली बाइट में बिल्कुल पास हो गए, पास विद डिस्टिंक्शन।
हाँ जी लीजिए।
अपना नाम, स्थान और डेजिग्नेशन भी बता देंगे और फिर अपना अनुभव सुनाएंगे।
जी, मेरा नाम है बी विजय नायडू, हैदराबाद से हूँ मैं, दक्षिण मध्य रेलवे में काम करता हूँ एज ए ऑफिस सुपरिनटेंडेंट। शादी से पहले मुझे मेरे माँ कहती थी मेरा अच्छा बेटा, प्लीज सुनिए प्लीज। शादी के बाद मेरे बीवी कही मुझे अच्छा हस्बैंड मिला, माँ सोची मेरा बेटा खराब हो गया। अभी अभी जब मैं हैदराबाद से आ रहा था, बीवी कही थी मुझे इस जन्म में पाप किया, तुम्हारा जो सब पति मिला और बच्चे भी कहने लगा, क्योंकि इस बीच में उनके पे आई वाज टेकिंग मोर केयर ऑन दैट। बच्चा गाड़ी चलाता था, मैं कहता था हेलमेट पहनो, बाद में स्लो चलो, नहीं सुनता था, डैडी डांट के बोलते थे, पैसे नहीं बोलते थे। तो आफ्टर कमिंग हियर आई थॉट going back to my Hyderabad, do some meditation, and I should become a good son, good husband, and good father also. Little have been emotion, sorry.
नहीं कोई बात नहीं।
और कौन ऐसे सुनाना चाहता है? आगे आ जाए। माइक
भाई, सुरेश जी ने कहा कि आपको यहाँ सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छा लगा, हमने रियलाइज किया कि सेल्फ क्या है और सुप्रीम क्या है, सेल्फ और सुप्रीम और ये हमारा जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है इसके बीच में जो डिफरेंसेस होने चाहिए वो क्लियर हुआ। ये बात हमें सबसे अच्छी लगी, इसलिए कि अभी तक हम कन्फ्यूज थे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये चीज काफी क्लियर हुई है। मुझे लगता है शायद सभी लोगों को क्लियर हुई ये बात कि कैसे कैसे। और दूसरी बात, आपने कहा कि आप क्या करेंगे, तो बहन एक दिन अपने लेक्चर में बताई थी कि गुलदस्ता किनारे रखा हुआ है, किसी को पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि गुलदस्ता बीच में हो और किसी को पसंद है कि गुलदस्ता किनारे हो। तो हम आपस में इस तरह का कम्युनिकेशन करें कि कोऑर्डिनेशन हो जाए। अगर उनको यही पसंद है कि गुलदस्ता किनारे ही रखा हो तो ठीक है, किनारे रख देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, यहां से जाने के बाद हम उसको चेंज कर देंगे, जिससे आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो और कंट्राडिक्शन ना हो।
थैंक यू। अपना परिचय, अपना परिचय, नाम।
मेरा नाम सरोज कुमार दुबे, मैं आरपीएफ में वर्क करता हूं, दिल्ली से हूं, इंस्पेक्टर हूं।
आई आई, इस सीट को खाली रखिए और जिनको सुनाना इसी पे आके बैठ जाएं ताकि वो समय बचेगा। और
मेरा नाम अन्ना साहेब पाकरे है, मैं मुंबई से हूँ, रेलवे से हूँ। मैंने एक चीज पढ़ा था कि कोई भी सिचुएशन ये 10% रहती है,
इंसान के मतलब हावी होने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शन होता है वो 90% रहता है। जो 90% जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत खराब भी हो सकता है। यहाँ आने के बाद वो चीज में बहुत सुधार हो सकता है कि वो 90% रिएक्शन आप कैसे रिएक्ट करें।
आपका क्या है, हो सकता है नहीं, आपने क्या अनुभव किया?
मैं वही करूंगा जो जो बैड रिएक्शन होगा किसी सिचुएशन के ऊपर, तो स्टेबल माइंड होगा तो ऑटोमेटिकली मेरी रिएक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी,
बहुत अच्छी।
मेरी क्या शायद सभी की हो जाएगी।
ओम शांति। भाई सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमें मौका दिया उन्होंने यहाँ आने का। मैं सीनियर सेक्शन ऑफिसर हूँ रेलवे में, जगाधरी से आया हूँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूँ। तो सबको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है, कई बार जो लोग आ जाते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ काम करने के बाद भी वो इरिटेट कर देते हैं कि गुस्सा में आ जाता हूँ। अब मैं ये कोशिश करूँगा यहाँ आके सीख के कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करूँ और जो है उनकी बॉल अपने ऊपर मत लूँ। ओम शांति जी।
मैंने यहाँ आकर
आप अपना परिचय पहले दीजिए।
मैं संजीव चंद्र कुमार, सीनियर इंजीनियर नॉर्दर्न रेलवे से हूँ। मैंने यहाँ पर शांति, प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव किया है, जिसका प्रकाश मैं जाकर और साथियों से, भाई बहनों से साझा करूंगा
जी।
ओम शांति।
इधर 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 फेस कर
कैमरे के।
ओम शांति। मेरा नाम है निखिल कजरुलकर और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद एक जो चीज जो चाहिए थी हम सभी को, एक बेसिक एलिमेंट, वो चीज यहाँ पे मिली कि हम हमेशा हर कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता, वो कन्फ्यूजन में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे आके कि हम एग्जैक्टली कौन है, क्या किस उलझन में पड़े, वो हर सवाल के जवाब हम यहाँ से मिले और भविष्य में भी हम और भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव में रहना है और किस कैसे भाई और बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो चीज यहाँ से मिली। थैंक यू सो मच
जी।
ओम शांति।
मैं बहुत देर से सोच रहा था कि बहने तो कोई आई नहीं रही है।
मेरा नाम अनीता नायर है, मैं रतलाम डिवीजन से आई हूँ, नीमच से। मैं बुकिंग क्लर्क हूँ और मैं जब 8 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी हमारी होती है तो 3,000 से 3,500 के करीब पैसेंजर हमारे साथ डील होते हैं। कोशिश करते हैं कि हम सबके साथ में अच्छा व्यवहार करें, लेकिन कोई ना कोई एकाधी भी पैसेंजर ऐसा आ जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। पिछले 3-4 सालों से मैं काफी बुरे समय से गुजरी थी, जिससे मैं काफी डिप्रेशन में आ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना 100% देती हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न में सब जगह से, घर से, बाहर से वो नहीं मिलता है। मुझे गुस्सा, इरिटेशन बहुत था। अभी जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग एक रूम में 9 लोग हैं, हैदराबाद से भी दीदियाँ काफ़ी हैं, लेकिन हम पहले दिन जब आए थे तो जब हम लोग सोते हैं तो दीदी लोग उठ जाती, वो पन्नी बजाती, कामकाज करती, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जब बाद में जब यहाँ सेशन सुना, 2 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है दीदी है, अपना काम कर रहे हैं, अपन अपने हिसाब से करेंगे। जब वो लोग सोते हैं तो हम लोग 3 बजे उठ के नहा के जब हम लोग यहाँ आते थे तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जाके भी गुस्सा और इसमें हम पूरा तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और मैं लास्ट में 2 लाइन कहना चाहूंगी कि यहाँ जो हमें सब कुछ मिला उसके लिए शुक्रिया से बढ़कर क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। शुक्रिया से बढ़कर क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। खुशी से बढ़कर है जो खुशी, उस जैसा बात का नाम नहीं। शुक्रिया।
मैं नारायण लाल रतलाम से। अभी जिन भाई ने बोला था कि पत्ता ही भगवान की मर्जी से हिलता है, मैं उन भाई से कहना चाहता हूँ, उसी गीता के अंदर यह भी लिखा हुआ, कर्म किया जाए फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान।
ओम शांति। मैं सुना था ब्रह्म कुमारी केंद्र के बारे में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी प्रेरणा से मेरे में बहुत बदलाव आएंगे। इन 4 ही दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने आप को काफी कुछ बदल लिया हूँ। हम 4 लोग आए हुए हैं और अब मैं अपने एक साथी को समझाता हूँ, जैसे कि हमारे रूम में एक बच्चा है जो पंखा चला लेता है बार बार, हमारे एक मित्र हैं बार बार कहते हैं कि पंखा बंद करो, हमने कहा तुम अपनी चारपाई बदल लो, बच्चे को परेशान मत करो। मैं बहुत गुस्से वाला हूं, लेकिन मैं 4 दिन में गुस्सा कहां गया मैं नहीं जानता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणा से मैं आगे सब आपकी प्रेरणा से काम करूंगा। थैंक यू।
आप अपना परिचय।
सॉरी, मैं राजेंद्र नाथ दुबे गोरखपुर से हूँ, इंडियन रेलवेज में हूँ, स्टैटिस्टिकल ऑफिस में हूँ, चीफ ओएस हूँ। थैंक यू।
थैंक यू जी।
आइए माता जी।
माता जी
संभाल।
मैं कलकत्ता से आई हूँ, गौरी चक्रवर्ती।
मुंह उधर कर लिया। हाँ बस।
मेरे यहाँ आके जो कुछ भी देखा, सुबह सुबह रोना आ जाता है, पता नहीं किस लिए। मेरे घर में मेरे हस्बैंड है और हम दोनों ही हैं, लेकिन दोनों का चरित्र पूरा अलग है। उन्होंने आर्मी ऑफिसर थे, मैं घरवाली। हम जो बांधते थे, जो बोलते थे, उनका दूसरा लगता है। उनका जो बोलना है वो हमको दूसरा लगता है। अब यहाँ आके मेरे को लगता है, अभी घर जाके मेरे को ही समझ में आना चाहिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है।
अभी वो बोलेंगे, वो भी अच्छा ही लगेगा। चल 3 मिनट।
हाँ जी, और कोई?
हाँ, थोड़ा भाई बोले।
हाँ, अब मैं हमारे मंच पर चलोगे।
सभी दीदियों को प्रणाम। मैं सुभाष चंद्र पुरोहित, स्टेशन प्रबंधक चित्तौड़गढ़। यहाँ आने के बाद सबसे बढ़िया चीज तो ये लगी कि इन लोगों ने हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया है, पर सबसे खूबसूरत चीज दीदी लोगों का ज्ञान। आप लोगों का ज्ञान इतना एक्सीलेंट है, हमें कभी पता ही नहीं, पूरा जीवन निकल गया। 57 साल की उम्र हो गई मेरी। फिर बहुत सी बातें ऐसी जो आप लोगों ने बताई, वो हमारे किसी को ध्यान भी नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं थी। इस सभी चीजों को हम आत्मसात करेंगे और हम काफी परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद।
अब आपके ही एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय अशोक खरे जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी यहां पर 4 दिन में आपने विशेष क्या अनुभव किया है और उसके आधार पर किस प्रकार से एक रेलवे अधिकारी के रूप में रेल के अंदर या रेल सेवाओं में क्या लाभ मिल सकता है, और एज एन इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भी किस प्रकार से उस सेवा में सहयोगी बन सकते हैं जो सेवा का कार्य ब्रह्मा कुमारीज अपने प्रयास के रूप में कर रहा है, और उस जो भी कार्यक्रम करते हैं उसके माध्यम से जो संदेश हम देना चाहते हैं वो आप किस प्रकार से आगे पहुंचाएंगे, उस विषय में कुछ शब्द हमारे बीच रखेंगे आदरणीय अशोक खरे जी।
ओम शांति। सबसे पहले 1 मिनट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं इस ब्रह्मा कुमारी इस संस्था से कैसे जुड़ा। बता दूं कि बचपन से ही इसमें काफी रुचि थी। बचपन से, जैसे पहले संस्कार होते थे शाम के टाइम 1 घंटे, पेरेंट्स बोलते थे तो रामायण रोज पढ़ना एक रेगुलर कंपलसरी होता था पढ़ाई के पहले, तो 1 घंटे पहले रामायण पढ़ते थे, वो करते थे, उस पर अध्ययन करते थे, तो उसमें धीरे धीरे काफी गहराई से रुचि होती गई। फिर बाद में जब वो हुआ तो फिर काफी धार्मिक, उसमें आध्यात्मिक नहीं धार्मिकता में काफी कुछ आए, डेली पूजा करना, रेलवे प्रशासन में रेलवे में रह करके भी और समय निकाल करके एक घंटे पूजा करना वो करना, इससे घर में जो वाइफ भी बोले कि 1-1 घंटे टाइम क्यों इतना लगा रहे हो, इतना भगवान के सुनते नहीं है, या 1-1 घंटे जरूरत है इतनी जोरों से आरती करने के लिए या सब करने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए करने के लिए। उस वक्त लगता था ये क्या बोलते हैं, मैं तो पूजा कर रहा हूं, पूजा करने में इसको ऐसा लगता है। लेकिन उनका था कि भगवान 1 मिनट में भी सुन सकते हैं। ये सब होते होते लेकिन संतुष्टि फिर भी नहीं होती थी। फिर अभी कुछ दिनों में फिर मैं जब मैं सुबह बचपन से 4 बजे उठने की आदत है मॉर्निंग में, और फिर मॉर्निंग वॉक वगैरह जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक वगैरह जाते हैं तो जनरली जैसे आजकल मोबाइल वोबाइल हो गया है तो गाने वाने सुनने या कुछ करने है तो भजन वजन सुनना ये शुरू किया। ऐसे यूट्यूब में धीरे धीरे देखते देखते 1-2 बार कभी बहन सिवानी का यूट्यूब में वो आ रहा था लेक्चर, तो वो बाय द वीक लिखोगे या बाय माने जिज्ञासा थी तो उसको सुना, तो सुनने लगे एक दो मिनट के लिए लगाया होगा तो सुने तो पूरा लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगे कि यार ये ऐसा होता है, यही तो मैं ढूंढ रहा था बहुत दिनों से, यही तो मैं जानना चाहते थे, बहुत सारे प्रश्न थे, जैसे कल डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो रावण के इतने सिर थे या हनुमान इतने छोटे से बड़े कैसे हो गए, वैसे मेरे भी मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे कि कृष्ण थे भगवान, कृष्ण है कि राम है, राम है कि शंकर है कि दुर्गा है, इतने सारे भगवान है किनको याद करें किनको नहीं याद करें, कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण को याद कर रहे हैं, राम ने तो रामचंद्र जी को, समझ ही नहीं आता था, इतना कंफ्यूजन कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं। जब बहन शिवानी के सुने तो एक दिन सुना, यार मैंने कहा ये भजन अजन बेकार, इसको नहीं सुनना, बंद कर दे, मैंने उस दिन से भजन या कोई गाने वाने सुनना बंद कर दिए। और वॉकिंग में जाते थे तो फिर बहन शिवानी के करीब महीने भर रोज ये सुनने लगा वीडियो, एक एक चीज क्लियरिटी आती गई, अपने आप जो प्रश्न थे मेरे बहुत सारे, जो बचपन से बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे 20 साल 25 साल से जो प्रश्न थे, वो अपने आप उसके उत्तर मिलते गए उसमें। ऐसे ही फिर धीरे धीरे सूरज भाई के लगे, तो जब वो आते हैं तो पूरे सभी आ जाते हैं, तो सूरज भाई की ऐसे बहन, फिर इसके बाद में मैं जबलपुर में जब पोस्टेड था तो वहां भी जैसे जाता ही था तो आप बहन भी आई थी, जब जबलपुर में अभी एक फंक्शन हुआ था मुझे याद है, आपके पास स्टेज मिले थे, उस फंक्शन को अटेंड किया, तो ऐसे धीरे धीरे करके जोड़ते गए और लगा कि वास्तव में ये चाहिए हमें। जैसे अभी आज बताया मैं एक साल से करीब जोड़ रहा हूं तो काफी कुछ था, लेकिन अभी जो इस सेशन में इस यहां पर आकर के जो हमको अनुभव हुआ, अनुभूति हुई कि क्लैरिटी इतनी हो गई कि एक्चुअल में बॉडी और सोल वगैरह काफी कुछ बात हो गई, उसमें जाने का समय नहीं है, लेकिन इतनी क्लैरिटी हो गई कि एक्चुअल में है क्या, हम हैं क्या, हम अपने आप को ढूंढ रहे थे ना, फर्स्ट सेशन में फर्स्ट डे में वो क्लियर हो गया कि हमें क्या है, सभी को हो गया होगा ऑलमोस्ट, सभी लोगों ने अपने शेयरिंग किया, तो ये करके हमको ये क्लियरिटी हो गई। अब मैं रेल यहां पर ये आध्यात्मिकता है और आपको अपने जीवन में अपने परिवार में भी अपने रिश्ते निभाने, अपने जो पार्ट अदा करना है वो करना है, अपने रेल शासन में जो रेल में है रेल में काम करना, खास करके जो रेल संचालन डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो रेल संचालन में जैसे लोको पायलट हैं, कंट्रोलर हैं, स्टेशन मास्टर हैं, हमारे गार्ड हैं, इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, खासकर जिनको रिश्ता रेल के पहिए के साथ है, वो इसको अपनाएं। मुझे ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा लगा ब्रह्म कुमारी संस्था का, इसमें क्लैरिटी हमको हुई है। आप कुछ भी प्लेटफॉर्म बनाना चाहें लेकिन मेडिटेशन करके उससे क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है आज का कि स्पीड सेफ्टी स्पेशलिटी आध्यात्मिकता, तो आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपने स्टेबिलिटी ऑफ माइंड लेवल बढ़ा सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। जब हमारे दिमाग की स्थिरता होगी जो कि रेलवे में संचालन के लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है, अगर आपका माइंड स्टेबल है आप गलती नहीं करेंगे, और जो संचालन कर रहा है गाड़ी का वो गलती नहीं करेगा, रेलवे का मेन ऑब्जेक्ट सॉल्व हो जाएगा, जो मेन हमारा उद्देश्य है रेलवे का, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेफ गाड़ी चले, स्पीड से गाड़ी चले, और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के माध्यम से आपका माइंड स्थिर है तो निश्चित रूप से आप इंप्रूव करोगे वर्किंग में, वर्किंग इंप्रूव करोगे रेलवे इंप्रूव करेगा, नॉट ओनली रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में हम लोग सब लोग हैं, सभी लोग चाहे रोड इवन दो सभी जो हैं सभी रोड में ड्राइव तो करते ही हैं अपनी गाड़ियां, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट से हैं, उनको स्टेबिलिटी माइंड का बहुत ज्यादा स्थिरता का आवश्यकता है और आध्यात्मिकता के माध्यम से कर सकते हैं, विशेषकर जो रेलवे में हैं उनको काफी सुविधाएं हैं, वो चाहे उनकी इच्छा व्यक्त करने की जरूरत है, अपने जो भी आपके ऑफिस के हेड हैं उनके पास जाएं, रेलवे के नियम हैं, वो सुविधाएं उठा सकते हैं और यहां पर आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय दिव्या बहन से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द इस कार्यक्रम के अंत में प्रेरणा के रूप में हमारे बीच रखें, आदरणीय दिव्या बहन जी।
ओम शांति। तीन चार दिन आप सबने बहुत ही अच्छा यहाँ के ज्ञान का, वातावरण का, मेडिटेशन का लाभ मिला है और आपने अपने जीवन का कीमती समय यहाँ पर दिया है। हम कहेंगे हमें दिया है, ये उससे हमें खुशी है। और जो यहाँ अनुभूति आपने की है, जो आपके चेहरे पर खुशी आई है, हमारी शुभ भावना है कि सदाई वो खुशी आपकी बनी रहे और उसी के लिए इस विद्यालय से किसी न किसी प्रकार से संपर्क बना करके आप रखें। हमारे बहुत सारे मीडिया पेपर, प्योरिटी पेपर, अलग अलग भाषाओं में हमारे मैगजीन हैं, जैसे भाई ने कहा शिवानी बहन के, ऐसे और हमारी बहनें और भाइयों के लेक्चर्स यूट्यूब पर होते हैं। पीस ऑफ माइंड हमारी चैनल जो 24 घंटा है, जिसका भी घर बैठे भी आप लाभ ले सकते हैं। और जहाँ जहाँ नज़दीक में सेवा केंद्र आपके हैं तो वहाँ जाकर के इस चीज़ से जुड़िए, तो नेचुरली है आपके विचारों में चेंज आएगा, व्यवहार में भी परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा और आपको अपने आप से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ जो अनुभूति की है, हम समझते हैं, आशा रखते हैं कि वो जारी रखें। जो प्राप्ति यहाँ हुई है वो सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी हम सब बहनों की शुभ भावना और शुभ कामना आपके प्रति है। ओम शांति।
आप सबका भी धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम का लाभ लिया और इस कार्यक्रम का लाभ लेकर के आप जा रहे हैं और ये आप आगे बढ़ाएंगे, उसका एडवांस में आप सबको धन्यवाद, उसके लिए भी आप ताली बजाएं।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही।
ये विदाई नहीं है, बधाई है। आप जा रहे हैं दूसरों को लाने के लिए।
साथी न कारवा है ये तेरा इंतहा है, साथी न कारवा है ये तेरा इंतहा है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकल है अपनी धुन दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं
गाइए
तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही।
थैंक यू।